ओम शांति। आज हमारा समक्ष भ्राता रामलोचन भाई जी हैं, आपका हम दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जैसे भगवान को सब याद करते हैं, परंतु जिन्हें भगवान स्वयं याद करे वो कितने महान भाग्यशाली होंगे। आप वो महान हस्तियों में से हैं जिन्हें स्वयं भगवान याद करते थे कि मेरे वो बच्चे आएंगे जो योग युक्त भोजन बनाएंगे। आपको योग में बहुत रुचि है, आप कभी भी अमृत वेला मिस नहीं करते हैं। आपकी वाणी बहुत मीठी, मधुर और योग युक्त है, जो आपसे सुनते ही हमें अनुभव करेंगे। आपका लौकिक जन्म अयोध्या के पास हुआ। सन 1972 में आपको बाबा का परिचय मिला और उसी वर्ष में ही आप यज्ञ में समर्पित हो गए। आप सारे भारत और विदेश में योग भट्टी व सेवा के लिए चक्कर लगाते रहते हैं। कई कॉन्फ्रेंस में आप प्रवचन देते हैं। आप शांतिवन में वीआईपी डाइनिंग व किचन संभालते हुए ईश्वरीय सेवा व स्व उन्नति करते और कराते हैं। आप बहुत सरल स्वभाव के और मिलनसार हैं। आपको इस डायमंड हॉल में स्वागत है, स्वागत है। आपका विषय है आश्चर्य बनने की समर्थ विधि। भ्राता रामलोचन जी, ओम शांति।
ओम शांति। हम आप सभी शिव बाबा की अमर संतान आत्मा हैं, लेकिन द्वापर युग से हम सब ने भगवान को देहधारी माना। अगर किसी ने शिव को भगवान माना भी तो शिव शंकर एक कर दिया, इसलिए निराकार तक नहीं पहुंच सके। तो देहधारी को भगवान माना तो खुद को भी भगवान का बच्चा देहधारी ही समझा। तो द्वापर युग से आत्मा देहधारी स्वयं को समझकर देहधारी भगवान को भी किसी न किसी रूप में याद करती रही, और वो याद खुद को देह समझना, शरीर समझना और देहधारी को भगवान समझना इतना पक्का हो गया कि अब उसको भूलना मुश्किल लग रहा है। जब बाबा आया तो आ करके सबसे पहले एक ही शब्द दिया, बच्चे तुम आत्मा हो, ये शरीर नहीं हो। आत्मा की नॉलेज मिली, हम आप कल्प कल्प ब्राह्मण आत्मा बनते हैं। कल्प कल्प आत्मक स्वरूप में टिकने का अभ्यास करते हैं, इसलिए नॉलेज मिलते ही ये बुद्धि में बैठ गया कि मैं आत्मा हूँ। जो देवी देवता घराने के नहीं हैं, उनकी बुद्धि में ये बात नहीं बैठती, कितना भी समझाओ। तो हमारी बुद्धि में तो बैठ गया, लेकिन एक है जानना, नॉलेज से जाना, बुद्धि ने माना, लेकिन अब है संस्कार अर्थात स्वरूप बनना। तो जानना और मानना यहां तक तो हम पहुंच गए, नॉलेज फुल हो चुके हैं, समझ इतनी आ गई है, स्वीकार किया हुआ है कि आप दूसरे को भी समझाते हो, नहीं मानता तो भी कहते हो नहीं आप आत्मा ही हो। इतना आपने स्वीकार कर लिया है, निश्चय से कहते हो कि मैं आत्मा हूँ, आप भी आत्मा है। लेकिन तीसरी बात है जो स्वरूप में स्थित होना, उसमें अभी नंबर वार है। स्वरूप में स्थित होने में अभी थोड़ी मार्जिन ज्यादा दिखाई देती है, किसी की किस स्थिति तक है, किसी की किस स्थिति तक। जो आत्मा जितना आत्मक स्वरूप में टिकती जा रही है, स्वरूप बनती जा रही है, वो आत्मा उतना बाप समान बनती जा रही है। जो आत्मा स्वरूप में नहीं टिक पाएगी, सिर्फ जानने और मानने तक है, वो आत्मा कभी भी बाप समान नहीं बन सकती है। वो कभी बाबा के पास वतन में बैठकर बाबा के समान स्थिति का अनुभव करे, साथ में बैठ जाए, ऐसा अनुभव हो कि मैं आत्मा मास्टर भगवान हूँ, इस स्थिति का अनुभव नहीं कर पाएगी। अगर समानता का अनुभव नहीं किया तो वो सतयुग में भी राज घराने में नहीं आ सकती है, राजधानी में आ जाएगी। राजधानी में तो नौकर चाकर प्रजा दास दासी सब हैं, लेकिन राज घराना माना राजाओं के रिश्तेदार बनना, उनके राजमहल में रहना या उनके रिश्ते में रहना। तो ये बनने के लिए आपको आत्मक स्वरूप की स्थिति अवश्य बनानी है, सिर्फ जानने मानने की नहीं, स्थिति बन जाए। प्राप्ति आपको स्थिति से है, स्वरूप में टिकने से है, सिर्फ नॉलेज से तो भावना का भाड़ा मिल जाता है। जिसको सिर्फ नॉलेज है वो भगवान से अब भी मांगता रहता है, बाबा मुझे योग में अनुभव नहीं होता, अनुभव कराओ, बाबा मेरा ये विघ्न हटाओ, बाबा मेरी ये परिस्थिति हटाओ। नॉलेज है, नॉलेज मिल चुकी है, विघ्न कैसे हटाया जाए, नॉलेज मिल चुकी है, कैसे भगवान से शक्ति लो, नॉलेज मिल चुकी है, कैसे आप बाबा को याद करो, लेकिन नॉलेज प्रैक्टिकल हो नहीं पा रही है, नॉलेज काम नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि नॉलेज काम तब करेगी जब नॉलेज फुल के साथ पावरफुल होंगे। आप आत्मा में इतनी पावर होगी जो नॉलेज को हजम कर सको, नॉलेज को स्वरूप में ला सको, और वो तभी हो सकता है जब आप आत्मक स्वरूप में टिके हुए होंगे तो। क्यों? भगवान ज्ञान आत्मा को देता है, भगवान वर्षा आत्मा को देता है, आत्मा भगवान का बच्चा है, ये शरीर नहीं। अपना सारा ज्ञान आत्मा का है, साइंस का ज्ञान प्रकृति का है, अपना ज्ञान प्रकृति से परे का है। ऐसे शायद आज की मुरली में आता, साइंस घमंडी और साइलेंस घमंडी। अपना ये हुनर साइलेंस का, ये जितना आप आत्मक स्वरूप में टिकते जाएंगे उतना ये आपकी शक्ति बढ़ती जाएगी। एक ने ऐसे प्रश्न पूछा था हंसते हंसते कि कितनी बार सोचना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूं तब आत्मक स्वरूप में टिक पाएंगे। कुछ है गिनती कितनी बार सोचना पड़ेगा? क्योंकि इसके बिना तो योग नहीं, कुछ नहीं। जैसे योग में बैठते हो पहला संकल्प ही है मैं आत्मा हूं, क्योंकि आत्मा का पिता परमात्मा है। तो कितनी बार सोचना पड़ेगा, कितनी बार संकल्प करना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूं? इसका जवाब था कि द्वापर युग से लेकर कलयुग तक जब तक ब्राह्मण बने हैं या अब भी देह भान में रहते हैं, तो जितनी बार देह भान में रहकर मैं किया होगा उतनी ही बार मैं आत्मा हूं सोचना पड़ेगा। सोचो कितनी बार एक दिन में इस देह भान के बस मैं कितना करता हूं, कितनी बार बोलता हूं, सोचता हूं, संकल्प करता हूं, उतना ही आत्मक स्वरूप में रहने के लिए करना पड़ेगा। बार 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 अभ्यास करना पड़ेगा। तो आत्मक स्वरूप में टिकने के लिए आप सब अभ्यास भी करते होंगे, लेकिन मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, सिर्फ इसी एक स्वरूप के अभ्यास से आत्मक स्वरूप में टिक नहीं सकते, नहीं तो किसी को कितना समय 5 साल 10 साल 20 साल या जितना समय हुआ ज्ञान में चलते हुए यही अभ्यास करते रहे। लेकिन आप लोग अगर बाबा के मुरलियों पर ध्यान दो तो आपको समझ में आ जाए कि आत्मक स्वरूप में टिकने के लिए बाबा ने किस किस रूप से कहा है। आप आत्मक स्वरूप में टिकने के लिए बाबा 4 प्रकार के शब्द का प्रयोग करता है आत्मक स्वरूप, लेकिन 4 प्रकार से। वो 4ों प्रकार है देही अभिमानी, आत्म अभिमानी, तीसरा विदेही, चौथा अशरीरी। देही अभिमानी, आत्म अभिमानी, विदेही और अशरीरी। अगर देखा जाए 4ों का अर्थ एक ही है, देही अभिमानी अर्थात देह से परे, आत्म अभिमानी अर्थात आत्मा, विदेही माना बिना देह के आत्मा, अशरीरी माना बिना शरीर के आत्मा, बात एक ही है। लेकिन आत्मक स्वरूप में टिकने के लिए ये 4 शब्द का प्रयोग बाबा ने किया है। अब आप सोचो कि 4 प्रकार के शब्दों का प्रयोग बाबा ने क्यों किया। ये 4 शब्द आत्म अभिमानी, देही अभिमानी, विदेही, अशरीरी, ये 4 शब्द कहां कैसे कब प्रयोग करने हैं? क्योंकि जो ब्राह्मण आत्मा इस 4ों का प्रयोग नहीं करेगा वो कभी भी आत्मक स्वरूप में टिक नहीं सकता, क्योंकि 4ों बहुत जरूरी है। इन 4ों का अभ्यास आवश्यक है। कभी आप लोगों ने सोचा है कि इन 4ों में अंतर क्या है या 4ों एक ही है? देही अभिमानी, आत्म अभिमानी, विदेही और अशरीरी, है 4ों में अंतर या एक ही है? पांडव, अच्छा है अंतर। अगर शब्द 4 हैं तो अंतर तो जरूर है, लेकिन 4ों को कहां प्रयोग करना है इस पर देखना है। क्योंकि जो चीज जहां प्रयोग करनी है अगर वहां वो प्रयोग न किया तो सफलता नहीं मिल सकती है। आप सोचो, आपके पास कोई 2-3 प्रकार की दवा है, लेकिन जो दवा जब खानी है तब न खा के इधर की उधर करके खाओ तो फायदा होगा? या जैसे देखो कि हर एक चीज हर एक को सूट नहीं करती। कई पुरुषार्थ में क्या करते हैं, एक दूसरे के पुरुषार्थ को फॉलो करते, लेकिन एक दूसरे के पुरुषार्थ को फॉलो करके कोई भी संपन्नता को पा नहीं सकता। जैसे आप इस स्थूल में देखो, कोई कहता है सुबह सुबह खाली पेट ये खाने से बड़ा फायदा होता है, कई कहते। अब ये जिसने कहा उसके शरीर की प्रकृति अपनी है, उसके शरीर का अपना हिसाब किताब है। कोई खाली पेट उसको खाने से ठीक होगा और कोई खाली पेट खाने से और बीमार हो जाएगा। क्यों? उसकी प्रकृति अपनी है, उसके शरीर का टॉलरेंस पावर अपना है, सहन शक्ति अपनी है। ऐसे आप जब पुरुषार्थ करते हो तो जो आत्मा पुरुषार्थ कर रही है, जिसको आप फॉलो कर रहे हो, उसके स्वभाव संस्कार क्या हैं? वो किस बात को लेकर के ज्यादा जोर दे रही है? हो सकता जिस बात पर वो ज्यादा जोर दे रही हो, जिस संस्कार को मिटाने के लिए, वो संस्कार आप में हो ही नहीं। जरूरी तो नहीं सब में एक ही कमी हो, हमारे में दूसरी कमी है, आप में दूसरी है, किसी में और कमी है, सब में एक ही कमी नहीं हो सकती। इसलिए सब बात एक के ऊपर ही नहीं सूट होती है। ऐसे नॉलेज है, अज्ञान की पॉइंट हर एक को उसी रूप में सूट नहीं होती। हर एक ज्ञान की पॉइंट हर एक के लिए अलग अलग है। तभी देखो कोई भी पॉइंट बाबा एक नहीं बताता है, एक पॉइंट का कई बार प्रयोग करता है, कई रूप से प्रयोग करता है, क्योंकि हर एक के सरकमस्टेंसेस, हर एक की मन की स्थिति अपनी अपनी है। उस स्थिति के आधार से वो उसको प्रयोग करे तो उसको सफलता मिलती है। अगर फॉलो करो तो बाप को करो। क्यों? क्योंकि बाप सब बात में आगे है, संपन्न है, अनुभव में भी नंबर वन है, शक्तियों में भी नंबर वन है। तो जो संपन्न है, संपन्न में सब कुछ आ जाता है। बाकी जो हम एक दूसरे को देखकर पुरुषार्थ को फॉलो कर रहे हैं, इसमें कमी रह जाएगी। उसका गुण देखो, विशेषता देखो, लेकिन पुरुषार्थ में आप बाप, बाप के श्रीमत और अपने संस्कार के प्रमाण आप पॉइंट लेकर के करो तो आपको ज्यादा सफलता मिलेगी। अगर हम दूसरे को देखते रहेंगे तो एक बहुत बड़ी बात आती है कि मान लो आप मुझे फॉलो कर रहे हो या क्लास कराया तो आप उस पर पुरुषार्थ बढ़ाना शुरू किया, तो देखो कितनी सूक्ष्म बात है कि सबसे पहले आपको मेरी याद आएगी, फिर उसके बाद बाबा की याद आएगी। तो सेकंड ग्रेट हो गया। पुरुषार्थ वो होना चाहिए कि पहले बाबा याद आए, फिर सेकंड ग्रेट है आत्माएं याद आए। अब बाबा कैसे याद आए, उसकी विधि है कि जब आप किसी को भी फॉलो करते हो तो ये जरूर बुद्धि में ऐड करो कि इस आत्मा ने क्या पुरुषार्थ किया है जो इतनी महान बन गई, इतनी बाबा के नजदीक आ गई, ये विशेषता इसमें आ गई। उस विशेषता को स्मृति में लाकर मन में यह संकल्प लाओ कि मैं भी इस विशेषता को धारण करके बाप के अति समीप जाऊंगी। मैं आत्मा भी बाबा आप जैसी बनूंगी, मैं आत्मा भी महान बनूंगी। विशेषता इस आत्मा की, याद बाबा की। फिर आप देखो पुरुषार्थ में कैसे उड़ते। देहधारी की याद पुरुषार्थ में डाउन करती, बाबा की याद पुरुषार्थ में उड़ाती। किसी की विशेषता को देखना ही है भगवानों वाच, लेकिन विशेषता में प्रभावित होना गलत है। विशेषता को देखकर विशेष बनने की प्रेरणा लो, विशेषता को देखकर धारण करने की प्रेरणा लेकर आप भी महान बन जाओ। देखो जब आप ब्रह्मा बाबा को देखते हो तो आपके मन में क्या संकल्प आता है, बाबा मैं भी आप जैसा बनूं, आप जैसा बनूं। और तुरंत याद आएगा ब्रह्मा संपन्न कैसे बना। शिव बाबा को याद किया, संपूर्ण स्वाहा हो गया, श्रीमत पर चला, जो भी विशेषताएं याद आई, फिर हमें वो बनना है। ऐसे आप हमेशा कहीं भी किसी को भी देखो लेकिन तुरंत बाबा याद आए। पुरुषार्थ में बाबा शब्द पहले आए, ये है सबसे तीव्र पुरुषार्थ, फास्ट पुरुषार्थ। तो आत्मक स्वरूप में टिकने के लिए जो चार बातें बताई थी, पहली है देही अभिमानी। देही अभिमानी अर्थात आप हर कर्म करते हुए कर्म इंद्रियों का आधार लेकर, कर्म करते हुए कर्म इंद्रियों के अधीनता से न्यारे, कर्म इंद्रियों के मालिक बनकर कर्म करने वाले। देह है क्योंकि आप कर्म योगी हैं, कर्म के बिना रह नहीं सकते, तो कर्म करते हुए इंद्रियों का आधार लेते हुए देह के द्वारा कर्म करते हुए आप इस देह के भान से स्वयं को परे रखो। ये सुनने में सहज है, लेकिन प्रैक्टिकल स्वरूप में इस स्मृति में तब आ सकेंगे जब कर्म करते हुए दो स्थिति का अभ्यास करते रहेंगे। तब वो दो स्थिति है, एक है कि मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म कर रही हूँ, एक स्थिति है कि मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म कर रही, आँखों के द्वारा देख रही, हाथ के द्वारा ये कर्म कर रही हूँ। आत्मा करण हार बनकर इस इंद्रियों के द्वारा कर रही है। ये है देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करना। लेकिन देही अभिमानी की स्थिति है करावन हार बनना। जैसे शिव बाबा करण करावन हार है, वैसे आत्मा भी करण करावन हार है। एक बताया इंद्रियों के द्वारा करना, एक है इंद्रियों को आर्डर प्रमाण चलाना। जैसे गिलास है, पानी है, एक है कि मैं आत्मा इस हाथ के द्वारा गिलास उठाकर पानी पी रही हूँ। एक ये है करण हार, मैं आत्मा हाथ के द्वारा पानी पी रही, और दूसरा है मैं आत्मा इस हाथ को ऑर्डर देती हूँ, हे हाथ गिलास को उठाओ और पानी मुख को पिलाओ। बहुत ऊंची स्टेज है करावन हार। कर्म इंद्रियों का राजा बन जाना, जैसे बाबा अपनी राज दरबार लगाता था, किसी कर्मचारी ने धोखा तो नहीं दिया, हे मन तुमने ठीक से काम किया, ऐसे आप इसके राजा बनकर कराओ कराओ। राजा ऑर्डर देता है, करता नहीं है, ऑर्डर देता है। आप देखो मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चला पाती हूँ। इसके लिए बहुत बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर चाहिए। जब ये दोनों पावर होगी तब आप करावन हार बन सकेंगे। और करावन हार अर्थात जो बाबा मुरली में कहता है कर्म इंद्रियों के राजा बनो, आप राजयोगी हैं, प्रजा योगी नहीं। प्रजा काम करेगी, राजा काम कराएगा। देखो पास राम भी होता है, कृष्ण भी होते। सेवा राम ने भी बहुत की, कृष्ण ने भी की। प्रजा राम की बहुत ज्यादा है, कृष्ण की कम है। लेकिन दोनों में बड़ा कौन है? प्रजा राम की ज्यादा है, कृष्ण की प्रजा राम के अपेक्षाकृत कम है, लेकिन राम में और कृष्ण में बड़ा कौन है? कृष्ण बड़ा है। प्रजा कम है लेकिन बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि कृष्ण ने कर्म कराया, राजा बनकर कराया, राम ने किया, अंतर हुआ। कराने और करने में अंतर है। तो आप ऐसा अभ्यास करो, कभी मैं आत्मा कर्म इंद्रियों के द्वारा कर रही हूं, बीच बीच में अभ्यास करो कि हे मन, हे बुद्धि या हे हाथ, ये ऑर्डर देती हूं, आप ये कर्म करो। मन ऑर्डर देता हूं, एक संकल्प में स्थित हो जाओ। ये अगर ऐसे अभ्यास बीच बीच में करते रहो, फिर देखो आपकी देही अभिमानी स्थिति कितना सहज आ जाएगी। नहीं तो 63 जन्म का देह भान छोड़ता नहीं है। देह अभिमान से तो मुक्त हो चुके हो लगभग, लेकिन देह भान लटकाया हुआ है। देह अभिमान अर्थात 5 विकारों के बस, और देह भान अर्थात पद पोजीशन, स्त्री पुरुष, छोटा बड़ा, काला गोरा, इसका भान। ये तो कॉमन बात है, मैं कन्या हूँ, भाई हूँ, पति हूँ, माता हूँ, ये भान रहता ही है। लेकिन इस भान से मुक्त देही अभिमानी। दूसरा है आत्म अभिमानी। आत्म अभिमानी अर्थात जब आप बाबा की याद में बैठते हैं, जब योग में बैठते हैं, तो सब कुछ भूल, दे के संबंध, काम धंधा, सब कुछ भूल, मैं आत्मा हूँ। देही अभिमानी स्थिति में इंद्रियां याद हैं, इंद्रियों के द्वारा कर्म करा रही हूं, अगर ऑर्डर दे रहे हो तो भी याद है, हाथ को ऑर्डर दिया है। देही अभिमानी में इंद्रियां याद हैं, लेकिन उसके मालिक हैं। जैसे सतयुग में इंद्रियां होगी, कर्म होगा, लेकिन उसके मालिक होंगे। लेकिन जब योग में बैठते हैं तो ये कुछ भी ना याद रहे, बस मैं आत्मा हूं। अपने आत्मक स्वरूप में टिके रहो। मैं हूं ही मन, बुद्धि, संस्कार सहित ज्योतिर्बिंदु स्वरूप। ये अभ्यास करो कि तीनों रहते हैं एक साथ, या मन भागता है, बुद्धि संस्कार साथ रहती है, या मन बुद्धि रहता संस्कार भागता है, तीनों देखो एक साथ रहते हैं। मन बुद्धि संस्कार, कई बार मन संकल्प करता है लेकिन बुद्धि जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती, जल्दी स्वीकार नहीं करती है। मन को बार 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 लाना पड़ता है, और कई बार बुद्धि स्वीकार कर लेती है लेकिन संस्कार साथ नहीं देता है। जैसे आप सोचते हो कि मैं ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूं, सोच रहे हो, बुद्धि स्वीकार कर रही है, हां सचमुच मुझ आत्मा का रूप ज्योति स्वरूप है, बिंदु स्वरूप है, मैं हूं ही बिंदु स्वरूप, बुद्धि स्वीकार कर रही है, लेकिन संस्कार जो पहले वाले संस्कार हैं कि मैं आत्मा बिंदी नहीं लेकिन लंबा चौड़ा शरीर हूं, तो मन की आंखों के सामने सोच रहे हो बिंदी रूप है लेकिन आ रहा है शरीर मन की आंखों के सामने, तो वहां आपका संस्कार आपको साथ नहीं दे रहा है। तो जब मन बुद्धि संस्कार तीनों एक साथ हो तब आप स्वरूप में टिक सकोगे। तो जब आप योग में बैठो तो टोटल ये अभ्यास करो कि मैं हूं ही आत्मा और कुछ है ही नहीं, बस मैं आत्मा, चाहे सूक्ष्म वतन में चाहे मूल वतन में, बाबा के पास बैठी। मूल वतन में ना पहुंच पाओ तो सूक्ष्म वतन में फरिश्ता रूप में बाप दादा की गोद में बैठ जाओ। जिस संबंधों का सुख चाहे लो, लेकिन बैठो इस पांच तत्वों की दुनिया से पार चले जाओ। जैसे आपके लिए ये पांच तत्वों की दुनिया है ही नहीं, बस मैं आत्मा मेरा बाबा, इसका आधार है, बाबा ही हमारा संसार है, बाबा ही हमारा संसार है, सर्व संबंध बाबा से है, मेरा सर्वस्व बाबा है, ये आधार है। तीसरा है विदेही। विदेही अर्थात जब आप कुछ कर्म नहीं कर रहे हैं, चल फिर भी नहीं रहे हैं, बैठे हैं या और कुछ हल्का काम कर रहे हैं, उस समय आप अपने स्वमान में रहो। सदा स्वमान में रहकर चलो, सोमान में रहकर बैठो, सोमान में रहकर उठो। सोमान, किसी भी सोमान में रहो, सोमान में रहने से आपका संकल्प बोल कर्म दृष्टि वृत्ति कृति सब बदल जाएगी। अगर सोमान स्वरूप में रहे तो जैसे हम कहते हैं ब्रह्मा बाबा इस श्रेष्ठ सोमान में रहता था कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा हूं, प्रजापिता हूं, सारी सृष्टि प्रजा है, मैं उसका पिता हूं। इस सोमान में रहने के कारण उस सोमान का प्रभाव बाबा का संकल्प बोल कर्म दृष्टि वृत्ति सब कुछ चेंज। लौकिक पत्नी यशोदा, बाबा की लौकिक पत्नी यशोदा, उसको बाबा कहता था यशोदा बेटी। ये माताएं या भाई अनुभवी होंगे जो इतना समय पति पत्नी के संबंध में रह चुके हैं, पति पत्नी का पार्ट बजा चुके हैं, वो इस सोमान के आधार से सब कुछ चेंज हो जाए, मेरी बेटी है, और इस वाइब्रेशंस का बल यशोदा मैया भी बाबा को कहती थी है पति, इतना समय पति के संबंध में रही है तो अभी कहती थी बाबा, बाबा कहती थी। अब आप सोचो इतना परिवर्तन का आधार क्या रहा, सोमान। आप भी अगर यही एक सोमान ले लो, मैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हूं, तो ये सोमान जो कि प्रैक्टिकल में हो, सिर्फ सोमान में नहीं रहते हो, रटने के लिए बीके हैं। बाकी अगर सोमान में रह जाओ तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी माना सारा संसार, चाहे ज्ञानी चाहे अज्ञानी, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, सब हमारे भाई बहन हैं, सब भाई बहन हैं। आप सब प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं, ये कहते हम बीके हैं, लेकिन क्या पत्नी को देखकर, बेटी को देखकर, बेटे को देखकर ये अंदर संकल्प आता है ये मेरा भाई है मेरी बहन है? नहीं उत्पन्न होता ना, कारण सोमान में नहीं। अगर सोमान में होते तो परिवर्तन हो जाता, तो सोमान परिवर्तन करेगा और सोमान आपके कर्मों को श्रेष्ठ बनाएगा और सोमान आपको देह भान से मुक्त करेगा। तो तीसरा है विदेही और चौथा है अशरीरी। अशरीरी अर्थात डेड साइलेंस, डेड साइलेंस, डेड साइलेंस अर्थात जब आप योग में बैठो या किसी समय भी आप एकदम जैसे कोई मर जाता है तो क्या बचता है, उसे कुछ भी याद रहता है जो मर गया? डेड साइलेंस अर्थात अशरीरी का अर्थ ही है शरीर के बिना, अर्थात मर गया। डेड साइलेंस अर्थात मैं आत्मा परम धाम में अपने बाप के पास बैठी हुई हूँ, एकदम निराकारी स्वरूप में। परम धाम में शरीर नहीं है, इस साकार दुनिया का संकल्प नहीं, कुछ भी नहीं है, बस मैं आत्मा मेरा बाबा, यही मेरा घर है, यही मेरा सर्व संबंधी, मेरा मीठा बाबा है। वहां बैठो, बाबा के पास बैठो। अगर थोड़ी देर भी बैठ जाओ तो बाबा के संग का रंग, निराकार बाबा का प्रभाव, निराकारी स्थिति का अनुभव बहुत ज्यादा समय तक कर सकते। देह में आओगे तो भी शरीर यहाँ होगा, लेकिन आप आत्मा की मन बुद्धि परम धाम में बाबा के पास ही। जब ये चारों प्रकार का अभ्यास करो, देही अभिमानी, आत्म अभिमानी, विदेही और अशरीरी, तब आप आत्मक स्वरूप की स्थिति को प्राप्त कर सको। और यही गीता का पहला शब्द है, आत्मक स्थिति में टिको, निरंतर परमात्मा को याद करो, तो आप संपन्नता को प्राप्त कर लेंगे, अर्थात बाप समान स्थिति बन जाएगी। अच्छा, ओम शांति।